नमस्कार दोस्तों। तोतो चांद की छोटी छोटी शरारतों में, छोटी छोटी कहानियों में आज एक नया अध्याय। उस अध्याय में एक छोटी सी दुर्घटना आपको मिलेगी सुनने को। जैसा कि आप जानते हैं कि तोतो चांद के पास एक डॉगी है था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी एक जर्मन शेफर्ड डॉगी था। वो था तो उम्र में छोटा, लेकिन आपने अगर कभी देखा होगा तो वो बहुत ही बड़ा लगता है शरीर से। उसके घने, उसके बाल, उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना, किसी को डराने के लिए काफ़ी है। बट बहुत ही फ्रेंडली भी होता है। अगर किसी से फ्रेंडली कर हो जाए, उसकी फ्रेंडशिप हो जाए, तो वो उनके लिए डरावना नहीं होता। तो तोतो चांद अपने डॉगी यानी रॉकी के साथ भेड़ियाँ खेल रही थी। भेड़ियाँ खेलने में उसके साथ उसको कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पे एक दूसरे को खड़ा होना होता था और लुढ़कते लुढ़कते कमरे के बीच में उनको आके मिलना होता था। और जो बीच में जब दोनों बीच में आके टकराते थे तो उनको भेड़िए की तरह एक दूसरे पे गुर्राना होता था। वो तो जर्मन शेफर्ड था, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो आता लुढ़कते हुए और फिर वो अपने दांत दिखाता और कान खड़े कर लेता। लेकिन तोतो चांद को अपने दोनों कानों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखकर कान खड़े होकर दिखाने होते थे और दांत निकालना होता था। ये दोनों कुछ समय तक खेलते रहे, पर तभी वो डॉगी भूल गया कि ये खेल है। और जब इस बार वो लड़कते लड़कते बीच में आया तो उसने खेल खेल में तोतो चांद के कान को ज़ोर से खींच लिया और वो कान उसका कट के लटक गया। ज़ोर से तोतो चांद चिल्लाई, इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसकी माँ रसोई से भाग कर आई और उसके पिता जो कि ड्राइंग रूम में बैठे वायलिन की प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी भागते हुए आते हैं। अब वो देखते हैं कि तोतो चांद खून से लथपथ हाथों से अपने कान को दबाए हुए है और कोने में खड़ी है रॉकी के पास। उसके कपड़े भी खून से सने हुए हैं, उसकी फ्रॉक लाल हो चुकी है और वो चिल्लाई जा रही है, डरी हुई है बहुत, पर वो रॉकी के पास खड़ी है। और उसको इस बात की चिंता हो रही है कि अब सारे मिलकर रॉकी को डांटेंगे और उसकी इस हरकत की वजह से उसको घर से निकाल देंगे। तो वो बार बार चिल्लाती है, रॉकी को मत डांटना, रॉकी को मत डांटना, उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना। और माँ डैडी उसको जब समझाना चाहते हैं तो वो समझना भी नहीं चाहती। उसे लगता है कि जब वो देख लेंगे तो वो और गुस्सा करेंगे और रॉकी को कहीं घर से निकाल ना दें या किसी को दे ना दें। खून टपकता जा रहा था। बड़ी देर बाद माँ डैडी को समझ में आया कि उसको रॉकी ने काटा है, इसलिए वो परेशान है और डरी हुई है कि रॉकी को निकालना दिया जाए। पर उन्होंने उससे वादा किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले तुम अपना कान दिखाओ, हुआ क्या है। उसने जब अस्वस्थ हो गई तब उसने अपनी कान से हाथ हटाया और दिखाया। माँ डैडी बहुत परेशान हुई ये देखकर कि उसका कान ही कट चुका है, लटक रहा है। माँ तो बिल्कुल हैरान परेशान चीख पड़ी। पिताजी गोद में उसको उठाए, जोर से भागे डॉक्टर की तरफ। माँ आगे आगे दौड़ रही थी रास्ता खाली कराने के लिए। जब वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने टांके लगाए, उसका कान वापस वहीं पर लगा दिया, ठीक किया और कान से लेकर सर तक पूरी पट्टी से बंधी हुई वो एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी खरगोश की तरह दिख रही थी। जब वो घर आती है तो वो घर में आकर रॉकी को ढूंढना शुरू करती है और रॉकी भी डर चुका होता है कि उससे कुछ बड़ी गलती हो गई है, तो वो घर में कहीं जाके छिप जाता है। तोतो चांद रॉकी को घर में ना पाकर बहुत परेशान होती है, रोने लगती है। इतना तो वो कान के कटने पर नहीं रोई थी जितना वो रॉकी को ना पाने पर रोती है। वो ढूंढती है, चिल्लाती है, रॉकी तुम कहाँ हो, रॉकी तुम कहाँ हो। डरा हुआ रॉकी धीरे से सोफे के पीछे से निकलता है और तोतो चांद को देखता है। उसकी चेहरे से, उसकी शक्ल से तोतो चांद को लग रहा था कि वो भी अफसोस कर रहा है कि उससे ये गलती कैसे हो गई। तोतो चांद उसको देखते ही उसके गले में अपनी हाथ को डाल देती है और पकड़ लेती है ज़ोर से। वो भी तोतो चांद को ध्यान से देखता है और उसके सही कान को चाट लेता है। तोतो चांद और रॉकी खेल के भी थक चुके थे और तोतो चांद तो रो के भी थक चुकी थी। अब उन्हें नींद सी आने लगी थी। माँ ने डैडी को देखा। डैडी को तो गुस्सा आ रहा था कि रॉकी को डांटे कुछ कहें, लेकिन माँ ने रॉकी की तरफ देखते हुए फिर डैडी को देखा और उनसे आंखों ही आंखों में कहा कि नहीं, हमने तो वादा किया है कि रॉकी को हम कुछ नहीं करेंगे। तो माँ के देखने से डैडी थोड़े से शांत हुए और उन्होंने फिर रॉकी को नहीं डांटा। अब दोनों तोतो चांद उसके माता पिता थोड़े अस्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आई। रॉकी के कान से बू आती थी, पर बू आती थी तो तोतो चांद ने उसको जैसे ही गले लगाया तो उसके कान को सूंघा। माँ बोलती थी कि तुम क्यों करती हो ऐसा, तो वो बोलती थी मुझे इससे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, इसकी बदबू अच्छी लगती है। तोतो चांद और रॉकी दोनों क्योंकि थक चुके थे तो अब वो नींद में आ गए। तोतो चांद के कपड़े बदल कर माँ ने उसे सुला दिया और रॉकी भी कहीं उसी के बिस्तर के पास बैठ के सो गया। दोस्तों कितनी प्यारी होती है ना ये बचपन की जो कहानियाँ हैं और ये बचपन की घटनाएँ। तोतो चांद को अपने से ज़्यादा रॉकी की फिक्र थी कि कहीं उसकी वजह से, उसकी हरकत की वजह से रॉकी को निकाल ना दिया जाए। कितना भोला, कितना मासूम बचपन था वो। तोतो चांद की इस घटना से आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, ज़रूर खुशी मिली होगी और बहुत डॉगीज़ के प्रति, अपने पेट्स के प्रति प्यार भी आया होगा और गुस्सा भी आया होगा ऐसी हरकतों को। दोस्तों मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। मेरे भी पेट ने मुझे एक बारी बहुत ज़ोर का मेरे हाथ में काट लिया था और यकीन मानिए जब उसने मुझे काटा मुझे दर्द तो बहुत हुआ, पर वो ये समझ गया कि उसको बहुत, उसने कुछ गलत किया है। वो पूरे एक साल तक मुझसे नज़रें ना मिला सका और जैसे वो मेरे साथ खेलता था वो मेरे पास नहीं आ सका था। तो पेट्स भी बहुत ही समझदार होते हैं और इमोशंस को हमारे समझते, हमारी वाइब्स को फील कर लेते हैं और इसीलिए वो कुछ बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन वो अपनी एक्शंस, अपनी हरकतों से हमें ज़रूर प्यार से, भावना से भर देते हैं। मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी जो हमारे थे उनके पास भी एक जर्मन शेफर्ड था। हम लोग पहले उसे बहुत डरते थे क्योंकि वो देखने में डरावना सा लगता है, लेकिन जब हम उसके घर पहली बार गए और जब जिनके घर में वो था उन्होंने कहा आप चुपचाप खड़े रहना, कुछ नहीं बोलना, शांत बिल्कुल। उसने जब हमें पूरा सूंघ लिया, सब कुछ कर लिया, अस्वस्थ हो गया कि नहीं हम लोग कुछ उसके लिए ख़तरनाक नहीं हैं, तो अब उससे हमारी दोस्ती हो गई। हम जब भी जाए वो खुश होकर हमें पकड़ लेता था, खूब खेलता था, खूब इंजॉय करता था। तो पेट्स अपने आप में ही बहुत प्यारे होते हैं। इस कहानी को ज़रूर आप सुनिएगा और लाइक भी करिएगा और मुझे प्लीज़ स्पॉटिफाई पे फॉलो भी करिएगा। अब अगली कहानी के लिए दोबारा मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।